अब इस तपस्या पट्टी में हम आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे बिजी सो इजी के साक्षात उदाहरण उमंग और ऊर्जा के अग्रदूत आध्यात्म जगत के नक्षत्र सर्वप्रिय ब्रह्मा कुमार ललित भाई जी को एक हाथ की ताली से भाई जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। आप 1993 से बाबा के ज्ञान में आए और 1997 से ईश्वरीय सेवा हर्थ आप पूर्णकालीन समर्पित जीवन में है। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी इसके सेक्रेटरी है जिसके साथ देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के अकाउंट्स फाइनेंस और लीगल मैटर्स को आप मैनेज करते हैं। फाइनेंस फ्रेटर्निटी विंग क्या वाइस चेयर पर्सन है। इस प्रकार लास्ट सो फास्ट के उदाहरण रूप में आप संस्था के एक महत्वपूर्ण पिल्लर के समान है। छोटी आयु से ही ईश्वरीय सेवा में नित नए आयाम रचने का आपका सिलसिला आज भी जारी है। अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारी के खुशी राजी सीनियर सिटीजन होम के भी आप प्रबंधक है। रेडियो साबरमती के चीफ प्रमोटर और दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना तथा दिव्यांग सेवा योजना के भी आप वाइस चेयरमैन हैं। नेचुरोपैथी योगा वास्तु एवं काउंसलिंग के क्षेत्र में भी आपने गहरा अनुभव है। सीए होने के साथ आप एक अच्छे लेखक, कवि और गीतकार भी है। 12 भाषाओं में प्रकाशित पुस्तक सदा स्वस्थ जीवन और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, सुगंधित पुष्प आदि के रचयिता होने के साथ साथ कई पुस्तकों में सह लेखक की भूमिका भी आपने निभाई है और आपके लिखे हुए बाबा के कई मधुर गीत भी हम सुनते रहते हैं। अपने कुशल सहयोग से अकाउंट से अनभिज्ञ अनेक छोटी बहनों को आपने अकाउंटेंट बनाया है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ, साइबर क्राइम और प्रबंधन संबंधित कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं एवं जानकारियां आप सोशल मीडिया के द्वारा भी ब्राह्मण परिवार तक पहुंचाते रहते हैं। ओजस्वी वाणी, मृदुभाषी का संतुलन आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। सहज भाव से सभी के सहयोग के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। आप जैसी बहुमुखी प्रतिभा के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान। अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान। सेवा में सदा अथक बढ़ाते यज्ञ किसान, सेवा में सदा अथक बढ़ाते यज्ञ किसान। ऐसी ऊंची हस्ती का शब्दों में कैसे करे गुणगान, शब्द में कैसे करे गुणगान। तो ऐसी नम्र विभूति से हम निवेदन करेंगे अपने अनुभव युक्त वचनों से योग के लिए दिनचर्या का महत्व विषय को हमारे आगे स्पष्ट करेंगे। आदरणीय भ्राता ललित भाई जी।
थैंक यू बेन जी। ओम शांति। आपकी तपस्या का बल प्रकृति को भी जीत लिया और गर्मी के इस मौसम में बहुत अच्छी बारिश करके ठंडक पैदा कर दी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय है। तो आपने दुनिया में भी देखा होगा, सुना होगा कि विश्वविद्यालय में सिलेबस होता है, शेड्यूल होता है, सब कुछ सिस्टेमेटिक होता है। हमारे यहां भी कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आज का जो विषय विशेष हमें चर्चा के लिए कहा गया है वो है योग में दिनचर्या का महत्व या रोल क्या है योग विषय में। बाबा ने वर्तमान समय को देखते हुए समर्पित बच्चे और गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को देखते हुए, छोटों को बड़ों को देखते हुए इतनी सुंदर दिनचर्या बना के दी जिससे हम अपने डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में है तो डिग्री प्राप्त करना होता है ना, तो हम सबको डिग्री लेने के लिए तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हम डिग्री प्राप्त कर सके इसके लिए बाबा ने ये सुंदर दिनचर्या बना के दी। कोई किसी भी प्रकार से किसी भी कारोबार में है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये इतनी सुंदर दिनचर्या है कि जिस दिनचर्या को फॉलो करके, सहज रीति फॉलो करके हम चारों ही विषय में वो पुरुषार्थ कर सकते हैं जो हमें पास विथ ऑनर बना सके इस डिग्री के लिए। और विशेष जो योग का विषय है वो बहुत सूक्ष्म है। सेवा है तो स्थूल है, भोजन बनाना है, सफाई करना है, ज्ञान सुनाना है, भाषण देना है, सब चीजें स्थूल है। लेकिन योग का विषय क्या है? सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। अब आप आधा घंटा बैठे भी हैं योग में, लाल लाइट है, गीत भी बज रहा है, सब आप बैठे हैं, लेकिन आप योग में है या नहीं है वो तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो आपको ही पता है कि आप योग में हैं या, मतलब योग में तो हैं, लेकिन भगवान के साथ योग में हैं या और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना के साथ योग में है वो तो और किसी को पता नहीं चलेगा। विचारों को स्थूल रीति से तो रीड नहीं किया जा सकता है सबके लिए, तो इसलिए ये हमें ही अपने आप के साथ चेकिंग करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ सत्य रहना पड़ेगा कि मैं आधा घंटा बैठा तो आधा घंटा कितनी देर में योग में रहा बाबा के साथ। कभी मकान के साथ योग होता है, कभी दुकान के साथ योग होता है, किसी परिवार वाले के साथ योग होता है, किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उसके साथ योग होता है, जिसको याद कर रहे हैं उसके साथ योग होता है। लेकिन यहां हम राजयोग की बात कर रहे हैं कि बाबा के साथ हमारा योग है या नहीं है, और है और दिनचर्या के द्वारा हम इस योग को कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे बाबा ने 24 घंटे को डिवाइड किया है 8-8 घंटे में, सबको पता है ना, 8 घंटा बाबा की याद रहे वो सब कुछ विशेष रूप से करना, 8 घंटा शरीर को विश्राम और शरीर का कारोबार, और 8 घंटा जो लौकिक कारोबार है या जो भी कारोबार मिला हुआ है वो करना, ये विशेष बाबा ने बताया। मतलब मोटा मोटा बाइफरकेशन बाबा ने ये दिया। तो आप सभी का यहां अभी भट्टी में आए हैं तब तक तो हो ही जाता है, तब तो होता ही 8 घंटे से ज्यादा ही होता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर होते हैं तब भी डेली का 8 घंटा हो जाता है योग का? जवाब आ नहीं रहा है, और आ रहा है तो ऐसे ऐसे आ रहा है। देखिए डिग्री लेना है हमें, पास भी तो ओनर होना है, तो फिर योग तो 8 घंटे का चाहिए ना। वैसे तो बाबा ने कहा निरंतर याद करो, वैसे तो निरंतर याद की बात है कि निरंतर ही याद में रहना है, फिर भी 8 घंटा तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको पता रहे कि हाँ विशेष इस समय तो मैं बाबा की अच्छी याद में था, ऐसा रहना चाहिए। बाकी तो निरंतर की बात है, शरीर तो किसी भी क्षण छूट सकता है, तब बाबा की याद का अभ्यास होगा तो ही बाबा की याद में रह सकेंगे। तो आप देखें अमृत वेला से, बाबा ने अमृत वेले का समय सबसे पहले हमारे लिए बनाया, जब सारी दुनिया विश्राम कर रही होती है, और आज की दुनिया में तो लगभग सोने का टाइम वो होता है, अमृत वेला लोग सोने जाते हैं, बच्चे सोने जाते हैं 2-3 बजे, और हमें उस अमृत वेला के समय में बाबा से गुड मॉर्निंग करना है और बाबा के साथ योग करना है। जब सारी दुनिया के वाइब्रेशन शांत होते हैं और तब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो याद सहज भी हो जाती है, पावरफुल भी होती है। और आप समझो सुबह मुरली क्लास तक 7-8 बजे तक, कहीं कहीं 6-7 क्लास होगा, कहीं 7-8 होगा, 8 बजे तक अगर आप मौन में रहते हैं, बाबा के साथ याद में रहते हैं, बाबा से बात करते रहते हैं, नहाना तैयार होना, कुछ हल्का खाना पीना भी है तो मुरली क्लास तक, तो 4 घंटा तो आपका उसी समय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इजीली हो जाएगा, मौन का भी अभ्यास हो जाएगा और नॉर्मली कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उस समय को। अगर लौकिक परिवार वाले भी है तो उस समय उनका डिस्टर्बेंस लगभग नहीं रहता है, लेकिन है एक डिस्टर्ब करने वाला उस समय भी। कौन है? मोबाइल उस समय भी डिस्टर्ब करने वाला है हमें। चाहो और उसका पॉजिटिव यूज करके याद में हम एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है तो फिर मोबाइल डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है। अगर खुद पर नियंत्रण है, समय की वैल्यू है, पास विद ओनर होने का लक्ष्य सामने है, तो उसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे या बंद रखेंगे, नहीं तो वो हमारा समय जरूर खा सकता है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दादी जानकी अपने क्लासेस में कहा करती थी और वो हम सबको सावधानी रखनी है, वो है कि पश्चाताप में समय नहीं वेस्ट करना है। बहुत गहरी बात है, समझना इसको आप। हमारा नियम है 3:30 बजे उठेंगे, तैयार होकर 4 बजे से योग करेंगे। अब अगर किसी कारण से, कोई भी कारण बना, किसी कारण से हम 4 बजे उठे 3:30 के बजाय, या 4:05 पे उठे, तो क्या होता है? मन में फिर पश्चाताप, अरे आज तो मैं लेट हो गई, आज तो मैं अमृत वेला में मिस हो गया, आज तो मेरा इतना टाइम चला गया, आज वो बाकी का 40 मिनट उसी में चला जाएगा। होना क्या चाहिए? जब से उठे, चलो जैसा भी जो भी कारण रहा, उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग किया और बाबा की याद में मगन हो गए। उसके बजाय अगर हमने पश्चाताप में समय निकाला तो वो टाइम भी जो मिला है वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमको अपने मन को समझाना है कि जो भी समय मिला वो याद में निकाले, न कि पश्चाताप में। एक सेकंड के लिए रियलाइज हो गया कि हाँ चलो अभी कल थोड़ा ये ध्यान रखेंगे ताकि लेट नहीं हो, वो एक सेकंड की बात है, उसको रियलाइज कर लेने का एक सेकंड के लिए, लेकिन फिर फुल स्टॉप, फिर वो लंबी नहीं चले लकीर, अरे ऐसा हो गया, रात को ये नहीं करता तो ये होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, ये सब उसमें टाइम चला जाता है। तो हमें पश्चाताप में टाइम नहीं निकालना है। कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बाबा ने बताया ही है, सबको पता है ना ट्रैफिक कंट्रोल का, तो अभी 10:30 का भी गीत बजा, ऐसे सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 बजे, फिर 7:30 बजे, और एक एक घंटे में भी 1 मिनट का गीत बजता है। तो ऐसी कोई बात है, किसी कारण से ट्रैफिक कंट्रोल 10 सेकंड लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया कुछ, तो कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, लेकिन बाकी का समय बाबा की याद में रहना है। या हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, सामने कोई चल रहा है या कोई खा रहा है या कुछ, तो मन में विचार चलेगा, देखो ये ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, अभी इतना भी नहीं पता है इनको, अपने को ज्ञानी कहते हैं, और ये देखो बैठे बैठे चल रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं? हमारा अकाउंट जमा थोड़ी हुआ, हम भले मौन है, योग में बैठे हैं, लेकिन योग में तो नहीं है। योग का विषय जो है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आप दादी जानकी जी के क्लासेस सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे हम एक एक धागे कपड़े से एक एक धागे को अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे हमारे विचारों को हमें देखना पड़ेगा कि ये जो विचार आ रहे हैं ये मुझे बाबा की याद में मगन कर रहे हैं या वेस्ट है या नेगेटिव है। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, महीन बुद्धि वाले होते हैं, वो अपने विचारों का सूक्ष्म से चेकिंग करते हैं कि कोई भी बात हुई तो ये मुझे बाबा की याद की तरफ ले गई या याद से दूर किया। अगर याद से दूर किया तो मैं समझ जाऊं, संभल जाऊं अपने आप से। तो दिनचर्या में कई बातें आएगी, 24 घंटा है ना, कम समय तो नहीं है और डेली है 24 घंटा, तो कई बातें आएगी सामने, तो वो बातें हमें याद से दूर ना कर दे, उसकी चेकिंग हमको रखनी पड़ेगी। बाकी जो दिनचर्या है वो बाबा ने ऐसी सुंदर बनाई है कि हम क्लास के समय तक क्लास कर सके, फिर जो भी नाश्ता आदि करना है, फिर अगर हम बिजनेस में जाना है, ऑफिस में जाना है तो हम अपने ऑफिस जा सकते हैं, गृहस्थ में है, घर में रहने वाली माताएं बहनें वो अपना कारोबार कर सकती हैं, समर्पण वालों का जो सेवाओं का या अन्य कारोबार रहता है वो उस पीरियड में कर सकते हैं, ऐसा पूरा दिनचर्या। ऐसा नहीं है बाबा ने ये नहीं कहा कि भाई सब छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन इतनी बैलेंस्ड दिनचर्या बनाई है, शाम को भी आप 6-7 बजे तक आराम से करो, फिर 7 से 7:30 नुमा शाम का योग करो, बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं वो अगर हम ध्यान से कर रहे हैं, ध्यान से का मतलब याद वाला, अगर हम याद से कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी याद कंटिन्यू रहेगी। कारोबार करते समय तो ऊपर नीचे कई बातें होती है, उस समय कभी याद कम भी हो जाती है, कभी भूल भी जाती है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का इतना अच्छा सिस्टम बनाया है जो हमें वापिस मूल तक ले जाती है, बीज तक ले जाता है ट्रैफिक कंट्रोल, तो बाबा की याद रहती है। और जितनी दिन भर के ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे होते हैं, बाबा की याद वाले होते हैं, उतना फिर रात्रि को मन हल्का रहता है, और अगर छोटी मोटी कुछ बातें भी हैं तो बाबा को याद करके फिर विश्राम में जाते हैं हम, तो हमारी योग निद्रा हो जाती है, माना निद्रा भी योग के खाते में जमा हो जाती है अगर हम बाबा को याद करके फिर जाते हैं। तो आजकल मोबाइल का जमाना है तो रात्रि को भी क्या होता है, मैसेजेस पढ़ना लिखना, वो उसी में काफी टाइम जाता है। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था, 95 की अव्यक्त वाणी है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, कि जब आप सोने जाओ, चाहे गृहस्थ में है आप, 2 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो बेड पर जाने के बाद कोई बात नहीं करने का, जो भी बात करनी हो पहले कमरे में, चेयर पर, सोफे पर बैठकर, कहीं डाइनिंग टेबल पर, कहीं पर भी आपने बात कर ली, बात जो भी करनी है, बेड पर जाने के बाद बाबा की याद में 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिले वो बैठे, दिन भर का चार्ट वो बाबा को दे दे, क्योंकि बाबा चार्ट भी मांगता है। बाबा कहता है जो पोता मेल रखता है वही व्यापारी अच्छा कमाता है आगे, ये पोता मेल जो है शाम को बाबा को रात को जरूर दे देने का, आज के दिन का, और जो अच्छा बुरा जो कुछ हुआ बाबा को सौंप के बाबा की गोद में विश्राम करने का, फिर कोई बात नहीं करने की, मोबाइल साइलेंट कर देने का, फिर कोई बात नहीं करने की। जिस प्रकार से हमारी रात्रि विश्राम का जो हमारा मन की स्थिति होगी वही अंत सो फिर आदि होगा। दूसरे दिन अमृत वेला उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए रात्रि विश्राम के समय जितना अच्छा हमारी स्थिति है उतना सवेरे वापिस हमारी स्थिति अमृत वेला भी बेस्ट रहेगी। अब ये स्थितियां ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि योग का खाता जमा करना है तो हमने देखा है वेस्ट, व्यर्थ, और वो भी परमत पर चिंतन पर दर्शन के कारण। वो दिन भर में इतना आता है जो हमारे योग को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा लगता है, जैसे भोजन में अचार अच्छा लगता है, चटनी अच्छी लगती है, तो ऐसे ही ये जो परमत परदर्शन की बातें हैं ना, वो सुनने में अच्छी लगती है। मन कहता है हाँ थोड़ा सुन लेवे, थोड़ा सुन लेवे, लेकिन सीधा प्रभाव उसका योग पर पड़ता है। हमको अपना धर्मराज बनना पड़ेगा परमत परदर्शन पर चिंतन को खत्म करने के लिए। धर्मराज बनना पड़ेगा। अगर हम अपना वकील बन गए खुद का तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? वकील क्या करते हैं? वकील क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं। जैसे किसी ने आके हमको कोई बात सुनाई, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आके सुना दी ऐसे ही तीसरे व्यक्ति की बात। अगर हम अपना वकील बनेंगे तो हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, इसके मन में भरा हुआ था तो निकल गया, ठीक है ये लाइट हो गए और मैंने सुन लिया तो क्या है, मैं थोड़ी याद रखने वाला हूं इसको, मैं तो निकाल दूंगा इसको। और थोड़ा थोड़ा बहुत जानना जरूरी भी है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो थोड़ा जानना तो जरूरी भी है। ये वकील जो है ना, ये इस प्रकार से मन को बचाव करेगा। और धर्मराज बने अगर हम अपने आप के, तो तुरंत फैसला कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, इसे बंद किया जाए, स्टॉप। सामने वकील क्या कहेगा? अरे नहीं सुनूंगा तो उनका बुरा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सुन लेता हूं। धर्मराज को बुरा लगता ही नहीं है। धर्मराज ये कहेगा कि नहीं सुनने में मेरा भी फायदा है, इसका भी फायदा है। वो स्ट्रिक्टली मना कर देगा कि नहीं। मेरे साथ प्रैक्टिकल घटना हुई थी, जब मैं सेंटर से यहां मधुबन में फुल टाइम रहने आया था, ये 2007-8 की बात है। यहां एक भाई था जो पहले से मेरा परिचित था, तो वो मुझे आके कुछ भी बात बता के चला जाता था, दो चार मिनट ले लेता था मेरी। अब उस बात का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं था, मैं सोचता था कि ये व्यर्थ है, वेस्ट है, ये मेरे को भी वेस्ट हो रहा है, इसको भी वेस्ट हो रहा है, इसको बंद किया जाए। लेकिन मैं सोचता था नया नया हूं, अभी मैं कुछ कह दूंगा तो यहां और ये हो जाएगा, ऐसा थोड़ा समय सोचा मैंने, तो थोड़ा समय तो मैंने चलाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये भाई तो बदलने वाला नहीं है, अभी मुझे ही अपने आप को इस व्यर्थ से बचाना पड़ेगा, अपना धर्मराज खुद बनना पड़ेगा। तो एक बार मैं ऑफिस में बैठा था वहां शांतिवन में, और वो भाई आया और आके सुनाने लगा, ललित भाई देखो आपके लिए और मेरे लिए है ना, ज्ञान सरोवर का फलाना भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, फिर पीस पार्क वाला भाई है ना वो भी उसके साथ मिलके ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तो ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में कर रहे हैं, अब हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैंने समझ लिया कि अभी इसने अपना व्यर्थ फिर चालू कर दिया है, आज इस बात को अपन यही फुल स्टॉप लगाना है। मैंने उसको कहा अच्छा आपके पास उस समय क्या थे, मोबाइल फोन बहुत कम हुआ करते थे, इतने ज्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा कि आपके पास ज्ञान सरोवर के वो भाई का नंबर है? तो बोले नहीं है, मेरे पास तो नंबर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मेरे मोबाइल से ज्ञान सरोवर एक्सचेंज में फोन किया और उनको बोला कि मुझे फलाने भाई से जरा बात कराइए। उसने उनसे कनेक्ट किया, मैंने अपना फोन स्पीकर पर रखा था। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं और फलाना भाई मेरे साथ बैठे हैं, स्पीकर फोन पर आपकी बात सुन रहे हैं। ये आके मुझे बता रहे थे कि किसी ने इनको बताया कि आप हमारे दोनों के बारे में ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, तो इसमें क्या सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। वो ज्ञान सरोवर वाला भाई बोला नहीं भाई साहब, हमने तो कभी ऐसी कोई बात की नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी तो ये तो ऐसे ही किसी ने बात कर दी है, हमने तो नहीं की। मैंने कहा मुझे भी पता है कि आपने नहीं की होगी ये बात, लेकिन अब इन भाई साहब को जो है किसी ने ऐसा बता दिया और इन्होंने विश्वास कर लिया, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे ही कन्फर्म करवा लूं। ओके थैंक यू ओम शांति, ऐसा करके फोन रख दिया। अब जो मेरे बाजू में बैठा था वो बोले ऐसे कोई थोड़ी सच बोलेगा, ऐसे कोई सामने थोड़ी स्वीकार करेगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। मैंने कहा एक काम करते अपने पीस पार्क वाले से भी एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। मैंने फिर पीस पार्क में फोन लगाया, फिर वही रिपीट हिस्ट्री ऐसे की ऐसी रिपीट हुई। वहां भी वो भाई बोला हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हम जानते भी नहीं है ऐसी बात क्यों हो रही है, क्या हो रही है। जब वो बात पूरी हो गई तो जो मेरे साथ बैठे थे वो बोलेंगे ऐसे कोई कन्फर्म नहीं करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आपको किसी ने बताया, आपने सच मान लिया और आप आके मुझे भी बता रहे हो और ऐसे ही वातावरण में फैल रहा है। अब जिसने ओरिजिनली बताया उसी से पूछ लेते हैं ना, तो जो होगा वो बता देगा, हम उसी के बात पर विश्वास करें, हम दूसरों की बात पे क्यों विश्वास करें। ऐसा करके मैंने उसको समझाया, फिर वो चला गया। आज 17-18 साल हो गए हैं, एक भी बार एक सेकंड के लिए भी कोई व्यर्थ बात नहीं। ओम शांति जरूर होती है और वो कुछ उनकी बात, मतलब कुछ कारोबार होता है तो वो बता देता है, कुछ काम है कोई सेवा है तो। और उसने दूसरे 10-15 को और बता दिया कि भाई ललित भाई इसके बारे में कुछ बात करना हो ना तो ध्यान से करना, नहीं तो वो तो सामने सामने बात करा लेते हैं। तो और बाकी भी व्यर्थ से बच गए। तो ये अपने ये वो बुरा मान लेंगे तो वो, अरे क्यों बुरा मान लेंगे, कितना फायदा हो गया, मैं भी व्यर्थ से बचा वो भी व्यर्थ से बच गए, तो ये तो दोनों को फायदा हुआ ना। थोड़ी देर के लिए चलो बुरा मान लिया, मेरे मन में उनके प्रति कोई नफरत थोड़ी है, कोई घृणा थोड़ी है, मैं उनको कोई गिराना थोड़ी चाहता भाई, है तो शुभ भावना ना, तो शुभ भावना का असर दिखेगा तो अपने आप ही रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में इतना व्यर्थ है और सबसे ज्यादा व्यर्थ जो मोबाइल के द्वारा आता है, संघ का प्रभाव मोबाइल से जो पड़ता है, लोगों से तो अभी कनेक्शन कम हो गया है क्योंकि मोबाइल से टाइम ही नहीं मिलता है। घर में डाइनिंग पे चार जने बैठे हैं, चारों ही अपने अपने मोबाइल में व्यस्त, एक दूसरे को भी बात करने का टाइम नहीं है। तो ये जो संघ है तो अपने आप को बचाना तो पड़ेगा हमको, तभी योग लगेगा। आप देखो हाथी को कौन परास्त करता है, चींटी। अब चींटी कितनी सी है, हाथी के मुकाबले में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हाथी के कान में घुस जाती है तो बेहोश कर देती है उसको। ऐसे ही हम महारथी हैं, लेकिन छोटी सी बात कान में घुस गई ना, कई तो ज्ञान छोड़ के भी चले जाते हैं छोटी सी बात के कारण, वर्षों की तपस्या ऐसी चली जाती है, रिलेशन बिगड़ जाते हैं, जबकि बात में कोई तंती नहीं होता है, सार ही नहीं होता है। तो अपने आप को इस दिनचर्या में व्यर्थ से बचाना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम 8 घंटे की जो हमारी याद की यात्रा है प्रतिदिन की, वो हम कर सकेंगे। अभी 100 साल का संगम युग, 90 साल निकल चुके हैं, 10 साल बचे हैं, 10 साल में भी स्थापना और विनाश दोनों का कार्य होना है। हाहाकार तो शुरू होने वाला है, उसके बाद तो पुरुषार्थ होगा नहीं, तो पुरुषार्थ का कितना सा समय बचा है हमारे पास, मुश्किल से 2-3 साल पुरुषार्थ का, मुश्किल से। वो भी गारंटी नहीं कि हम इस शरीर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसकी भी क्या गारंटी। और डिग्री तो लक्ष्मी नारायण की लेनी है ना सभी को, लक्ष्मी नारायण की डिग्री, तो फिर योग का खाता तो जमा करना ही होगा। योग से ही विकर्म विनाश होगा, योग से ही उच्च पद प्राप्त होगा। ये 8 घंटे वाला डेली का हमारा चार्ट अच्छी तरह से होना चाहिए। नहीं होता था, मेरा भी नहीं होता था। मैं भी एक बार दादी जानकी जी को बोला, क्योंकि जब मैं मधुबन में रहने आया तो यहां तो इतनी सेवाएं थी, इतना मिलना, बात करना, फोन से बात करना, बहुत सेवाएं रहती थी, तो मेरा बोलने का ज्यादा पार्ट हो गया। तो मैंने दादी जानकी जी से कहा, दादी जी आप कहो, आपकी श्रीमत हो तो मैं महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या सप्ताह में एक दिन मौन रखूं, जैसा आप कहें तो मौन रखूं। तो दादी मेरे सामने देखा, दादी का मैं सारा दिन मौन में रहती हूं ना, इसीलिए बोल सकती हूं। अब मैं कुछ समझा ही नहीं कि दादी क्या कहना चाहती है। दादी ने कहा, मैं सारा दिन मौन में रहती हूं इसलिए बोल सकती हूं। अब मैं देखता रहा दादी के सामने कि दादी क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती। फिर दादी ने समझाया कि मन का मौन रख और जरूरत पड़े तो मुख से बोलने का, जरूरत नहीं है तो मुख से नहीं बोलने का, लेकिन जरूरत है और फिर भी नहीं बोलेंगे तो दूसरों के संकल्प चलेंगे। बोले कोई बहन बैंक में गई है, वहां उसको कुछ काम है, तेरे को फोन करेगी, तू मौन में बैठा रहेगा, उसका काम बिगड़ जाएगा वहां, तो जमा होने के बजाय और नुकसान हो जाएगा, उधार तेरा खाता माइनस हो जाएगा। पर इसकी जगह तू मन से मौन रख, मन से असोचता बन जा। दादी ने मुझे एक शब्द दिया, असोचता बन जा। मेरे लिए बहुत कठिन था उस शब्द को जीवन में लाना, मतलब मेहनत करनी पड़ी। उसके पहले उस पे मैंने कभी इतना विचार नहीं किया था इस शब्द पर दादी ने मुझे पक्का कराया कि तू असोचता बन जा। अब इतना कारोबार, एक कितनी बहनें फोन कर रही है, कारोबार हो रहा है, कहीं नुकसान, कहीं क्या, कहीं डिफिकल्टी, अब असोचता बन जाओ। कैसे बन जाऊं असोचता, विचार तो चलता है। दादी बोले असोचता बन जा। दादी को तो पता ही था मेरा कारोबार, दादी मुझे लेके आई तो दादी को तो पता था कि मेरा क्या क्या कारोबार रहता है। फिर भी दादी ने कहा असोचता बन जा। कैसे बनते हैं, जब हम अपने आप को कठपुतली समझते हैं, बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा मीठा प्यारा शिव बाबा करण करावन हार वो करा रहा है, ये जब हमें संपूर्ण निश्चय हो जाता है तब हम असोचता बन जाते हैं, तब हम उसकी याद में मस्त रहते हैं। और बाबा का एक स्लोगन है कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। पढ़ा है आपने कहीं कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। तब मुझे पता लगा हां असोचता ऐसे बनते हैं। भगवान का यज्ञ है ना, भगवान कर रहा है, मैं क्यों चिंता करूं। हां पर कठपुतली बन के रहना है, वो जैसे नचावे ऐसे नाचना जरूर है, अवेलेबल रहना है, पर टेंशन नहीं कोई भी, असोचता। तो वो फॉर्मूला हुआ उसके बाद दिन भर बाबा की याद, हर कार्य में बाबा साथ, बाबा खुदा दोस्त, बाबा कंबाइंड स्वरूप, बाबा सर्व संबंधी, हर कार्य उसको पूछते हुए करना। बाबा चले, बाबा वहां उससे बात करे, बाबा उसको ये मैसेज लिखे, बाबा अभी हम सफाई करें, बाबा अभी विश्राम करें, बाबा अभी ये काम करें, हर काम में बाबा बाबा उसको साथ में। तो ये 8 घंटे वाला चार्ट जो है ना, वो मेरे को बड़ा हो रहा था कि मेरा भी अच्छी तरह से हो जावे। फिर मैंने अपनी दिनचर्या पर नजर डाली, मैंने कहा कैसे भी करके निकालना तो है 8 घंटा। तो जैसा बहन जी अभी परिचय में दे रहे थे ना कि कविताएं गीत लिखते हैं, तो अपने लिए कुछ लाइनें लिखी कि 8 घंटे तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं आसानी से, ताकि पास भी तो ओनर हो जाऊं। ये संगम का वो 10वीं में फेल हो जाए तो दूसरे साल एग्जाम दे देगा, लेकिन यहां हम फेल होंगे तो दूसरे साल दे सकेंगे, दूसरे जन्म में दे सकेंगे एग्जाम। पूरे कल्प कल्प की बाजी हाथ से चली जाएगी, इसलिए इसमें कोई रिस्क ले नहीं सकते। करना है मतलब करना ही है, नहीं तो बाजी हाथ से चली जाएगी। तो हमने कहा ये 8 घंटे वाला हमको पहुंचना ही है। पर अभी क्या होता है, कुछ भी कहते हैं तो कहते हैं टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही कहते हैं ना, भट्टी करने टाइम नहीं मिलता, थोड़ा मंथन करना टाइम नहीं मिलता, सेवा करने टाइम नहीं मिलता। तो ये जो मैंने पंक्तियां लिखी है, इसका भी मैंने टाइटल लिखा टाइम नहीं मिलता, लेकिन सुनते सुनते टाइम मिल जाएगा। ओ, आप भी महसूस करेंगे कि हाँ, ये तो 8 घंटा तो बड़ा आराम से मिल जाता है। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, या हम बेंजी को दे देंगे, वो आपको सर्कुलेट कर लेंगे। 3 वक्त हम करते हैं ना सभी, 3 टाइम भोजन, 3 क्या 5 टाइम कर लेते हैं नाश्ता पानी मिला के। तो बाबा की क्या श्रीमत है भोजन की, बाबा की याद में भोजन करना है। अब एक टाइम में 20 मिनट भी गिनो तो 3 टाइम में मिला के 1.5 घंटा तो हो जाएगा। तो 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते, सकास नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता। अगर उसना हमने सफल कर दिया तो हमारा 1.5 घंटा तो जमा हो गया हमारे खाते में। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस ट्रेन रिक्शा टैक्सी कार फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है, हम तो बैठे हैं। हम चाहे तो उस समय हमारी रूहानी यात्रा कर सकते हैं, परमधाम में जाके आ जावे, बाबा से सकास ले लेवे, सूक्ष्म वतन में जाके आवे, फरिश्ता स्वरूप बाबा और हमारे एडवांस पार्टी से मिलके आ जावे, मधुबन में 4 धाम की यात्रा करके आ जावे, सेंटर पर बाबा के कमरे में जाके आ जावे। हम अपनी रूहानी यात्रा कर सकते हैं ना, आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी ट्रैवलिंग का टाइम है। पर होता क्या है, बस में बैठे काम नहीं मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता, रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात, बाबा के बच्चे 2 बार तो स्नान पे जाते ही है, और बाबा ने तो श्रीमत दी साकार मूल्यों में आता था कि वो टाइम भी आप बाबा की याद में सफल करो। तो स्नान पे जाना शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात, एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात। ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, यहां आप भी नक्की पर घूमने जाते होंगे, अपने अपने वहां भी जाते हैं। बाबा साकार मूल्यों में कहता था घूमने की बात, पैदल की बात, किसका उदाहरण देता है बाबा? पादरी का उदाहरण देता है, नंस का उदाहरण देता है कि कैसे वो शांति से अपने क्राइस्ट की याद में पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में। पैदल करने की मना नहीं है, लेकिन बाबा की याद में हम पैदल करें, ये मुख्य बात है। तो ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता। अखबार पढ़ना ही है, टीवी में ये सीरियल तो बहुत अच्छा, इसको तो देखना है। वो उस दिन अगर किसी दिन सीरियल नहीं आया तो कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, यही मन में रहेगा। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते। जब भी किसी के साथ बात करेंगे ना, कोई परचिंतन की बात निकलेगी, आधा एक घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। अरे अच्छा, इतना बच गया, मेरा तो ये काम रह गया। फोन पर कितनी लंबी लंबी बातें फोन पर होती है। एक कन्या थी, वो फोन पर बड़ी लंबी बातें करती थी, घर वालों को सबको पता था ये बड़ी लंबी लंबी बातें करती थी। एक बार घर पे फोन आया, उसने उठाया फोन और 5 मिनट में रख दिया। उसकी माँ बोली, बेटा तू कभी आधा घंटा पहले तो रखती नहीं है, आज 5 मिनट में फोन रख दिया। बोले, किसी ने गलती से लगा दिया था। गलती में भी 5 मिनट, तो काम से लगाएंगे तो कितना टाइम लेगी। अच्छा आप बताइए कि हम किसी को भी कुछ कार्य के लिए फोन करते हैं तो कितने मिनट में वो काम की बात पूरी हो जाती है, कितने मिनट में पूरी हो जाती है? 1-2 मिनट, 4 मिनट में पूरी हो जाती है। उसके बाद की जो बातें हैं वो सब इधर उधर की, लेफ्ट राइट वाली। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, परमत पर चिंतन के आगे होश कहां रहते। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। बाबा ने उठने की क्या श्रीमत दी अपने को, क्या श्रीमत दी? अमृत वेला। 3-4, 2 बजे भी कोई उठते हैं तो 2-3-4, मतलब वो श्रीमत है अपनी अमृत वेला की। लेकिन निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जबरन उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते। भगवान पढ़ा कर जाते हैं, कौन पढ़ाते हैं हमें? हमारी दीदियां नहीं पढ़ाती है। मुरली किसकी है? भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान, इस दुनिया को चलाने वाला भगवान, वो हमारे लिए पढ़ा रहा है। भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। समय जो है ना, किसी के रोके नहीं रुकता है। कैलेंडर में कब महीना चेंज करने का, पेज चेंज करने का आ जाता है, अरे चलो पेज चेंज करो, 1 महीना पूरा हो गया, इतना फास्ट समय जा रहा है। कोई 20 करोड़ की घड़ी पेन पे भी समय को रोक नहीं सकता, वो निरंतर जाता ही रहता है। ऐसे ही ये संगम भी देखते 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 पूर्णता की ओर आ गया है, इसलिए किसी प्रकार की गफलत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचानक का पेपर आना है। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कह के आता, तो अचानक का पेपर तो अचानक आएगा, और हमारी तैयारी होगी, हमने बाबा की याद की आदत डाली होगी, हमको रस मिल रहा होगा, वो प्रेम से हम बाबा की याद में मगन होंगे, तो ही उस अचानक के पेपर में हम पास हो पाएंगे। अचानक का पेपर थोड़े ही कह के आता, हीरे जैसा जीवन अमोलक। ये जीवन संगम युग का कैसा है हमारा? हीरे जैसा। सतयुग में कैसा है? सोने जैसा। त्रेता में चांदी जैसा। द्वापर में कॉपर जैसा। और कलयुग में लोहे जैसा। संगम युग में हीरे जैसा। हीरे जैसा जीवन अमोलक बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। और लास्ट में, संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। संगम का ये नया, ये शरीर 83वां जन्म का है हमारा, और उसमें हमारा 84वां जन्म हुआ है अभी। ये 84वां जन्म किसने दिया हमको? किसने दिया 84वां जन्म? बाबा ने दिया। तो इस पर अधिकार किसका है? बाबा का अधिकार है। सपोज आपका एक फ्रेंड है, वो विदेश जा रहा है, तो उसके घर में 25 लाख कैश पड़ा है। उसने सोचा कि पीछे से कहीं चोरी नहीं हो जाए, वो 25 लाख आपको दे के जाता है कि जरा मैं एक महीने बाद आऊंगा, आप अपने यहाँ तिजोरी में रखना। आपने रख दिया, अब वो चला गया, पीछे से आपको 2-3 लाख की जरूरत पड़ी तो आप निकाल के यूज कर लेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी अमानत है, इसलिए यूज नहीं करेंगे। सपोज वो फोन करता है कि भाई मेरे भाई का ऑपरेशन है हार्ट का, जरा मेरा उनका लड़का आएगा, आप उनको 2 लाख रुपया दे देना। तो हम दे देंगे, क्योंकि उसका फोन आया खास, तो उसके कहने से हमने दे दिया। तो ऐसे ही ये पूरा जीवन किसकी अमानत है? यह जीवन सुबह मुरली क्लास तक ही जीवन होता है, फिर 83वां जीवन होता है। 84वां जीवन पूरा जीवन है या केवल 2-3 घंटे के लिए 84वां जीवन है? क्या कहेंगे? अगर देखो कोई व्यक्ति पिछले जन्म में चला जाए तो उसको भूत कहते हैं, हैं? पिछले जन्म वाला आ गया तो क्या कहेंगे? भूत आ गया। तो हम 84वें जन्म में, अगर हमने 83वें जन्म में चले गए तो भूत बन जाएंगे। इसलिए सदा 84वें जन्म में ही रहना है। और 84वां जन्म बाबा का दिया हुआ है, मतलब बाबा की अमानत है। तो संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में खयानत। खाली घड़ा भी, हमारी माताएं बहनें जानती है, पानी से नल से पानी टपक रहा है, एक एक बूंद, नीचे घड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में वो भर जाएगा। और भरा हुआ घड़ा है और हल्का सा लीकेज हो गया तो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। तो खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अब कहेंगे टाइम नहीं मिलता, मिलेगा अभी 8 घंटे का टाइम। आप देखो अमृत वेला ठीक से हो जाए तो 4 घंटा तो वहीं हो गया हमारा। फिर ये जो सारी आपकी दिनचर्या बताई बाबा ने, और सब चोरी करने के लिए मना किया, लेकिन हम गुण चोरी और टाइम की चोरी कर सकते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उसको पिगी बैंक देते हैं, वो उसमें कॉइन्स डालता रहता है, नोट डालता रहता है, फिर एक दिन वो भर जाता है तो खोलते तो अंदर से बहुत सा पैसा निकलता है। ऐसे रोज बाबा हमें एक पिग्गी बैंक देता है। ईश्वरी बैंक में हमारा खाता खोला है और उसमें 8 घंटे का योग का चार्ट जमा करना है उस बैंक में। तो हम अपनी दिनचर्या में से कहीं से 10 मिनट, कहीं से 15 मिनट, कहीं से आधा घंटा, कहीं से 5 मिनट निकाल निकाल के क्या करें, उस बैंक में डाले हम उस खाते में, ताकि रात को जब हम अपना चार्ट चेक करें तो 8 घंटे से ज्यादा का ही चार्ट हो याद का। और ये भगवान की गारंटी है, याद रखे, भगवान की गारंटी है कि अगर 8 घंटे से ज्यादा हमने बाबा को प्रेम से विधि पूर्वक याद किया, स्नेह से याद किया, सर्व संबंधों से याद किया, तो वो हमें सर्व पापों से मुक्त करके श्रेष्ठ पद देंगे। ये बाबा की लिखित गारंटी है। आपने कई मुरलियों में सुना होगा कि बाबा गारंटी लेता है, स्वयं भगवान गारंटी ले रहा है, हमें क्या करना है? अपनी दिनचर्या को ही तो थोड़ा अटेंशन से गुजारना है। दिनचर्या तो वही है, इजी है, बस थोड़ा अटेंशन देना है। वो अटेंशन रखेंगे तो हम जरूर ये पास कर लेंगे। और ये विधि सीख ले कि कैसे हर कार्य बाबा को पूछ के, बाबा को कह के करने का, कैसा करना है हर एक कार्य, ये विधि सीख ले। सारा दिन मुंह से बस बाबा 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 ही निकलना चाहिए। हर छोटे कार्य में उसका साथ, हर चीज उसको पूछ के करने का, सोचने का तो भी उसको पूछ के कि बाबा अच्छा अभी इसमें ऐसा सोचे, अभी इसमें ऐसा करे, उसको पूछ के करने का। और ये थोड़ा समय आप कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे, जागरूकता के साथ अभ्यास करेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी। मैं पहले साइकिल चलाता था तो 2-3 बार गिर भी गया था, फिर धीरे 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 चलाना सीखा, फिर तो हाथ छोड़ के चला लेता था, आदत पड़ गई ना। ऐसे ये बाबा को साथ रखने की आदत पड़ जाएगी ना, तो थोड़ा समय हमें अभ्यास करना पड़ेगा हर चीज के लिए। अभी व्हाट्सएप में मैसेज लिखना है, बाबा ये मैसेज लिखे, इसको पूछो ना उसको, पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है नहीं जाना पड़ रहा है। केवल अपने आप से ही तो बस बाबा को 1 सेकंड के लिए स्मृति में लाए, अच्छा बाबा इसको ये मैसेज लिख दे, इसको ये उत्तर लिख दे, या इसको ये बात पूछ ले, और क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा बाबा से। कहीं गलती हो रही होगी तो तुरंत बाबा टचिंग कर देगा, सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से दिनचर्या में निरंतर बाबा को साथ में रखने से ये संगम युग सफल हो जाएगा। और जिसके लिए हम बाबा के बने, वो इस यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगी, और इस डिग्री को प्राप्त करके हमारा पूरा कल्प सफल हो जाएगा। तो बात छोटी सी है लेकिन अटेंशन देने वाली है, और केवल अटेंशन रखेंगे तो भी हम इसने योग का खाता पूरा पूरा जमा कर सकते हैं। टेंशन देने की जरूरत ही नहीं, अरे 8 घंटा कैसे करेंगे, 8 घंटा भारी होने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी वे है। बस थोड़ा अटेंशन रखे, थोड़ा साथ रखने की आदत डाले और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी तो आप पांडव भवन में बैठे हैं, बाबा की कर्म भूमि यहां आप बैठे हैं, तो यहां तो और भी बल मिलेगा। तो और ये परिवर्तन भूमि है, यहां आप इतना दृढ़ संकल्प करके जाएं कि मुझे एक्यूरेट दिनचर्या में चलना है। लेकिन पश्चाताप नहीं करना है, याद रखे, पश्चाताप नहीं करना है। एक्यूरेट तो चलना है लेकिन पश्चाताप नहीं करना है, पर बाबा की याद, बाबा की याद, हर जगह बाबा की याद, तो सफल होता जाएगा। हमारी गुड विशेज है कि आप सभी का चार्ट, डेली की याद का चार्ट 8 घंटे से ज्यादा हो, आप पास विद ओनर हो और आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, सब एक हाथ की ताली से भाई जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमेशा पश्चाताप होता ही है जब दिनचर्या ऊपर नीचे होती है। तो आज बहुत सरलता से, रमणीकता से भाई जी ने दिनचर्या को कैसे सेट करना है, और इसमें भी योग के सब्जेक्ट को भाई जी ने बहुत महीनता से समझाया। कल भाई जी, मैं जब बाबा के कमरे में बैठी थी तो 2 दिन से मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा था कि जब बाबा के पास बैठते तो कोई ना कोई बात याद आ जाती है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे कुछ भी, सेंटर का कारोबार। तो उसी समय में बाबा को कहती थी, देखो बाबा आपके बीच में ये आ गया, अब देखो बाबा आपके बीच में ये बात आ गई, तुरंत अपने आप को रोकती थी। तो आज भाई जी क्लास कराते थे तो मैं हंस रही थी कि यही 2 दिन से मैं बाबा के साथ गेम खेल रही हूँ कि कैसे अपने आप को रोकना है। फिर बाबा के साथ हम बातें करते, वापस कोई बात याद आ जाती है, तो देखो ये दिनचर्या में भी हमें बहुत रमणीकता से लाइट रह करके कठपुतली की तरह, जैसे बताया ना कि तू मेरी याद में मगन रहे तो तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। भाई जी के साथ मेरे विचारों की तालमेल अच्छी होती है। हमारे सेंटर में हमने ये बोर्ड बना के रखा है और मैं उसको बार बार देखती भी हूँ कि मुझे उसकी याद में मगन रहना है ना, तो मेरे लिए सोचने का काम भी वही करेगा। तो दादी जानकी जी से वेरीफाई भाई जी ने कराया और आज उसका उत्तर भी हमें मिला कि हमें असोचता बनना है, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यज्ञ बाबा का है, कारोबार भी बाबा का है। तो चारों सब्जेक्ट को भी बाबा ने लिया, सॉरी भाई जी ने लिया, और योग की गहराई में भी भाई जी ने बहुत अच्छा बताया। और 8 घंटे का चार्ट कैसे बनाना है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले मेरा 8 घंटे का चार्ट रहता था, अभी नहीं रहता है। तो कविता के रूप में भाई जी ने ये भी समझाया कि कैसे हमें 8 घंटा करना है, क्योंकि मंथन तो चलता है ना, जो महीन पुरुषार्थी है, भाई जी ने क्या बताया, जो महीन पुरुषार्थी उसका चिंतन तो जरूर चलेगा। तो छोटी छोटी बातों में हमें समझाया कि रात्रि भी हमारी अच्छी होगी, बाबा को हम चार्ट देख करके सोते हैं तो हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, और अमृत वेला बहुत अच्छा होता है तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपनी दिनचर्या को, यहाँ मधुबन बेहद घर में आए हैं तो हम अपनी दिनचर्या को सेट करें, क्योंकि दिनचर्या देने वाला बाबा है, वो शुरुआत में ही भाई जी ने बताया। तो जो देने वाला बाबा है तो शक्ति भी कौन देगा उस पर चलने की, बाबा देगा ना। तो इसीलिए भाई जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और भाई जी का स्वभाव भी इतना सरल है, पर्सनल रीति से मैं बताऊं तो कि कोई भी बात है हम बहुत प्यार से उनके पास जा सकते हैं और प्यार से हमें उत्तर भी देते हैं। दूसरा, मेरे जीवन में मैंने देखा कि जब जब सेंटर की कोई बात आई, चाहे मकान रिलेटेड, चाहे कोई भी जमीन रिलेटेड, लेकिन मेरे लिए, मैं पर्सनल कहूंगी कि पहले से ही भाई जी मेरे लिए निमित्त बने थे, बहुत सारी बातें जमीन के रिलेटेड आई थी, तो बाबा उनको टच करता है। आज तक भी वही सिलसिला है कि बाबा ही उनको टच करता है कि ऐसा नहीं ऐसा। तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत उसके लिए रिस्पेक्ट है, दिल से मैं भी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू भाई जी।